पृष्ठ संख्या 46, अध्याय 4। सतवंत के फ्लैट और प्रमिला के फ्लैट में विशेष अंतर नहीं था। दो बड़े कमरे, एक बरामदा और एक छोटा सा छज्जा। दोनों का नक्शा एक जैसा था, दोनों का क्षेत्रफल भी एक जैसा था। लेकिन अब महेंद्र की तरक्की हो गई थी और वह डी टाइप क्वार्टर्स मिलने की उम्मीद कर रहा था, जिसका क्षेत्रफल इससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा होगा। फ्लैटों की सजधज में और रहन सहन में थोड़ा फर्क था। सतवंत के घर बड़ा सा रेफ्रिजरेटर आ गया था, जिसे उसने बैठने वाले कमरे में रख छोड़ा था, जबकि प्रमिला के घर में यह अभी नहीं आ पाया था। यों प्रेशर कुकर और बिजली की केतली दोनों के घरों में आ गई थी। सतवंत के पास दो ट्रांजिस्टर थे, क्योंकि उसे सारा वक्त संगीत सुनने का शौक था, जबकि महेंद्र ने अभी तक ट्रांजिस्टर नहीं लिया था। टेलीविजन के बारे में दोनों परिवार चुप थे, क्योंकि टेलीविजन का सेट किस्तों पर भी ले तो भी महंगा बैठता था। लेकिन सतवंत जानती थी कि तरक्की मिलने पर उसके सरदार जी सबसे पहले टेलीविजन सेट लाएंगे। जिस चीज का सरकारी हलकों में चलन हो, उसे ज्यादा देर तक तो स्थगित नहीं किया जा सकता। दोनों के घर में माइयाँ सफाई करने, बर्तन मलने और कपड़े धोने के लिए आती थीं। रसोई बनाने का काम वे स्वयं करती थीं। सतवंत ज्यादा सुघड़ थी, उसकी बैठक चमचमा रही थी। एक कागज का टुकड़ा भी कहीं पड़ा हो तो मुआ चिल्लाने लगता है, वह हंसकर कहा करती। सारा घर छमछम कर रहा था, स्वयं सतवंत भी छमछम कर रही थी। वह घर पर भी बाहर के कपड़े पहने रहती। मुआ कहता है, बनठन कर रहा कर, मैं दफ्तर से आऊं तो चाय तैयार हो और तू सच संवर कर बैठक में बैठी हो। सतवंत हंसकर कहती। किचन में काम करते वक्त वह गाउन पहन लेती, जबकि प्रमिला पुरानी तर्ज की थी, कमीज सलवार में ही सब काम करती रहती। सतवंत गैस पर रसोई बनाती थी, जबकि प्रमिला अभी भी पत्थरी कोयले से चूल्हा जलाती थी और राख से बर्तन मलना पसंद करती थी। बरामदा लांग कर दोनों छोटे से आंगन में आ गईं, जहां फूलों के कुछ एक गमले दीवार के साथ रखे थे। आजा मेरे साथ ही रसोई में आजा, वहां बैठी बातें करती रहेंगी। और सतवंत प्रमिला का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर की ओर ले गई। सतवंत अभी तक बनी ठनी नहीं थी, उसकी रेशमी सलवार के पांचे पैरों के नीचे आकर घिसट रहे थे। मैं अभी तक नहाई धोई भी नहीं, इतवार के दिन मेरे पृष्ठ संख्या 47। साथ यही होता है, मुए की हजार मांगे हैं, इससे निबट लूं फिर अपना काम करूंगी, सतवंत ने हंसकर कहा। फिर प्रमिला को अपने उलझे हुए बालों की ओर देखते हुए पाकर बोली, चील का घोंसला देख रही है? मुआ कहता है चील का घोंसला है, तू बालों में तेल क्यों नहीं लगाती? प्रमिला ने तनिक मुस्कुरा कर पूछा। तेल क्या लगाऊं, इसे अच्छा जो नहीं लगता। शादी से पहले लगाती नहीं थी, कैसे बाल बैठा कर कंघी करती थी, पर इसे तेल से चुपड़े बाल अच्छे नहीं लगते। मुआ कहता है प्यार करते वक्त इसके हाथों को तेल लग जाता है। सतवंत हंस दे और दीवार के साथ रखी एक कुर्सी को उठाकर रसोई घर की दहलीज के पास रखते हुए बोली, बैठ पम्मी, मुए को मेरा चील का घोंसला नजर आता है, अपने बाल तो देखे। और बात सुनाने से पहले ही सतवंत हंसी से लोटपोट होने लगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी बहन कहने लगी, सत्तो सरदार जी बाल खोल कर तेरे पास आएंगे तो डरना नहीं, तो समझना मुझे भूत चिपट गया है। तभी गुसल खाने में से सरदार जी नहा कर निकले, कमर में तौलिया बांधे थे और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। रसोई घर के बाहर प्रमिला को बैठे देख कर झेंप गए। ओह माफ करना प्रमिला जी, आप बैठी हैं, सत्तो तुमने बताया क्यों नहीं, कैसी हो तुम? और तौलियों को थामे भागकर अपने कमरे में घुस गए। सरदार जी अंदर चले गए तो सतवंत बोली, अजीब लगता है ना, अब तू चली जाएगी तो यह मेरे साथ लड़ेगा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे डांटेगा, औरतों के सामने यह चुप गुप हो जाता है, पहले मुझसे भी शर्माता था, गुसल खाने में से ही सूट पहनकर निकलता था। मैंने एक दिन कह दिया, मुझसे क्या छिपाते हो सरदार जी, अपनी बकरी की टांगें मैंने ना देखी हो तो कहो। मुआ रूठ गया मेरे साथ, 2 दिन बोला नहीं। सतवंत हंसकर कहने लगी। फिर रसोई घर के तख्ते पर से मटरों से भरी टोकरी उठा लाई और प्रमिला के सामने स्टूल पर रखते हुए बोली, ले मेरे साथ मटर छीलती चल, काम जल्दी हो जाएगा, आजकल मटर भी पके हुए आते हैं, क्या किसी काम के नहीं। और एक और स्टूल खींचकर बैठते हुए सतवंत ने कहा, मैं तो बहुत सी सब्जी साथ खरीद लेती हूँ। प्याज और आलू तो मैं 5-5 किलो एक ही बार डलवा लेती हूँ। कौन रोज रोज पाव पाव आलू खरीदता फिरे। इकट्ठी ली हुई चीज में बरकत भी ज्यादा होती है, क्यों नहीं पम्मी? पृष्ठ संख्या 48। फिर सहसा हाथ का मटर टोकरी में फेंकती हुई सतवंत उठ बैठी। ठहर, मैं सरदार जी को कपड़े दे आऊं। बिस्तर पर रख तो आई थी सारे कपड़े, मगर इसे चीज ना मिले तो आसमान सिर पर उठा लेता है। और भागकर अंदर चली गई। सरदार जी को अपने कपड़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। रुमाल और कफ, लिंक और एक एक कमीज के बारे में केवल सतवंत ही जानती थी, और वही बता सकती थी कि कौन सी चीज कहाँ पर है। प्रमिला पर सतवंत का बड़ा रोब था। लौट कर आई तो प्रमिला ने कहा, तू बहुत अच्छा घर चलाती है सतवंत, मुझसे तो नहीं चल पाता। कहाँ अच्छा घर चलाती हूँ, इससे जाकर पूछ। सतवंत के पास बैठकर प्रमिला का मन सचमुच हल्का हल्का महसूस करने लगा था। कैसी खिली खिली रहती है, पहले भी बड़ी हंसमुख हुआ करती थी। रसोई घर के बाहर दीवार के साथ लाल फूलों की एक बेल लहलहा रही थी। प्रमिला को सतवंत के घर का खिला खिला वातावरण उसके स्वभाव के अनुरूप लगा। सहसा सतवंत ने प्रमिला के बाजू पर हाथ रखते हुए चहक कर कहा, देख देख चिड़िया फिर आ गई है। और प्रमिला का बाजू दबाते हुए फुसफुसा कर बोली, धीरे से मुड़ना, नहीं तो डर कर उड़ जाएगी। प्रमिला ने घूम कर देखा, लंबी पतली सी चोंच वाली एक नन्ही सी चिड़िया फुदक कर एक पत्ते पर बैठ गई थी। पहले तो प्रमिला को चिड़िया नजर नहीं आई, वह पत्तों के भीतर छिप गई थी। पर फिर वह फुदक कर फूल की डंडी पर जा बैठी तो प्रमिला की उस पर नजर पड़ गई। हाय, कितनी छोटी सी है, उसके मुंह से निकला। मुंह इतनी हल्की सी है कि इसके बैठने से फूल पर भी बोझ नहीं पड़ता। मैं दिन भर इसके तमाशे देखती रहती हूँ। मटमैले रंग की चिड़िया थी, छाती पीले रंग की और लंबी पतली सी चोंच। उसके उछल कर बैठने पर भी डंडी नहीं झुकी। पत्ते पर से फुदक कर वह लाल फूल पर जा बैठी और फूल के अंदर चोंच डालकर डोंडी में से कुछ चुगती रही। दो तीन बार चोंच मारने पर भी जैसे उसने फूल के अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो, वहां से उछल कर वह बगल वाले फूल पर जा बैठी। कितनी प्यारी है, तुझे अच्छी नहीं लगती, सतवंत ने कहा। फिर मटर छीलते हुए बोली, आज मेरे साथ खाना खा के जाना, यह तो अभी ब्रिज खेलने एक दोस्त के घर चला जाएगा। पृष्ठ संख्या 49। हम बहाने बैठकर बातें करेंगी। आज तुझे पूरियां तलकर खिलाऊंगी, मेरे पास नींबू का बहुत अच्छा अचार है। इतवार के दिन सरदार जी को भी पूरियां खाना अच्छा लगता है। तूने अपने सरदार जी को कैसे काबू में रखा है सत्तो, सहसा प्रमिला बोल उठी। फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देती हुई बोली, तू हर वक्त खुश जो रहती है, वह तेरे साथ खुश क्यों नहीं होंगे? नजर नहीं लगाना मेरे घर पर पम्मो मुई, सतवंत ने हंसकर कहा। तेरा घर वाला तेरे काबू में नहीं है, तुझे तंग करता है? फिर शरारत भरे लहजे में बोली, क्या कहता है तुझे? तेरी छातियां छोटी हैं, होठ पतले हैं, इन मुंहों को इन बातों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। प्रमिला चुप बनी रही, एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर खेलती रही। मुआ एक दिन शहर ले आया, कहने लगा, तेरे होठों पर शहर लगाकर चूमूंगा, देखूं तो कैसे लगते हैं। सतवंत ठट्ठा कर हंस दी, तेरा मर्द भी ऐसी ही हरकतें करता होगा, और क्या? प्रमिला कुछ नहीं बोली। उसके होठों में हल्का सा कंपन हुआ और उसने आंखें नीची कर लीं। ठहर, एक एक प्याला काफी बनाकर पीती हैं, तो काफी पिएगी ना? मैं केतली में पानी चढ़ा देती हूँ। सरदार जी अपने कमरे में से निकले, ब्राउन रंग का सूट पहने हुए थे। घर से निकलने तक दाढ़ी पर ठाठा बांधे रहते थे, लेकिन आज प्रमिला की उपस्थिति के कारण उसे पहले से ही उतार आए थे। जूते सूट से भी ज्यादा चमक रहे थे। सतवंत झट से उठ खड़ी हुई, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं तो यूं ही पम्मी के साथ गप में हाँक रही थी। और मटरों की टोकरी एक ओर को करती हुई किचन के बाहर आ गई। आज तो बड़े बन ठन कर निकले हो, कहीं पम्मी का दिल तो मोहने नहीं आ गए? फिर पम्मी की ओर घूमकर बोली, पम्मी मुई हमारे घर न आया कर, अगर मेरे सरदार जी बौतर गए तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। सरदार जी को झेप हुई, खिसिया कर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बोला नहीं कर सत्तो, किसी वक्त चुप भी बैठा कर। प्रमिला जी क्या सोचती होंगी, कहते हुए सरदार जी और ज्यादा झेप गए। अच्छा प्रमिला जी, मैं चलूंगा। महेंद्र, ठीक है ना? पप्पू राजी खुशी है ना? मुझे माफ करना, मैं डॉट डॉट और हाथ जोड़कर घूम गए। पृष्ठ संख्या 50। रुमाल है जेब में या साफ रुमाल ला दूं? सतवंत ने सरदार जी के कंधे पर लगा धागे का टुकड़ा उतारते हुए पूछा। पैसे हैं ना या ला दूं? सतवंत अंदर भागती हुई गई और साफ रुमाल ले आई। खाने पर मेरा इंतजार नहीं करना सत्तो, मैं शायद देर से लौटूंगा, तुम खा लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम घर पर आओगे खाना खाने? सतवंत ने जिद करते हुए कहा। बाहर कुछ नहीं खाना, फिर पेट पकड़कर बैठ जाओगे, मैं आज पूरियां तलूंगी। सतवंत सरदार जी को दरवाजे तक छोड़ने गई, फिर चबूतरे पर उस वक्त तक खड़ी रही जब तक वह स्कूटर पर मोड़ नहीं मुड़ गए। मोड़ मुड़ते समय सरदार जी ने हाथ हिलाया, जब वह आंखों से ओझल हो गए तो सतवंत लौट आई। चला, बैठक में बैठती हैं, यहीं पर काफी पियेंगी, सतवंत ने कहा और प्रमिला का हाथ पकड़कर उसे बैठक में ले आई। सतवंत की बैठक उसके सारे घर की तरह साफ सुथरी थी। बीसियों बार वह उसे देख चुकी थी और बीसियों बार ही वह प्रभावित होकर लौटी थी। अंगीठी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना दो प्रेमियों का भूत रखा था। वह पहले भी उसे देख चुकी थी, मगर अब की बार उसे देखकर उसके दिल में गारी टीस उठी। दोनों प्रेमी उसकी ओर देखते जान पड़ते थे, मानो प्रमिला की खिल्ली उड़ा रहे हों। बुद्ध के पास हरे रंग का एक छोटा सा बियर पीने का मग रखा था, जो सरदार जी का कोई मित्र जर्मनी से लाया था। अंगीठी के ऊपर और चारों ओर दीवारों पर भारतीय चित्रकला की चार पांच तस्वीरें टंगी थी। अंगीठी के ऊपर वाली तस्वीर में अंधमुंदी आंखों वाली एक महिला, जिसके घुंघराले बाल कंधों पर छितरे थे, बीड़ा थामे बैठी थी। पीछे चांद खिला था और नीले कमल के फूल। तू अभी भी पेंटिंग सीखती है सत्तो? प्रमिला ने चित्र की ओर देखते हुए पूछा। यह तस्वीर तो तूने बनाई है ना? सतवंत हंसती। सभी तस्वीरों की तरह इस तस्वीर के नीचे भी एक कोने में बड़े अक्षरों में सतवंत लिखा था। सीख लिया जितना सीखना था, शादी के बाद कौन सीख सकता है? पर यह तस्वीर तो बड़ी अच्छी बनाई है, तूने बनाई है ना? मुई जानबूझकर पूछती है। नीचे का खाका थोड़ा सा मैंने बनाया था, तस्वीर सारी मास्टर ने बनाई थी। मुआ लालची बहुत था, घर आते ही पहले चाय मांगता था। अब सोचती हूँ, जो चलता रहता तो घर की सजावट के लिए मुआ पृष्ठ संख्या 51 कितनी ही तस्वीरें छोड़ जाता। कॉफी का प्याला हाथ में लेते हुए प्रमिला ने धीरे से कहा, मैं तेरे घर आई ही चाय कॉफी पीने के लिए हूँ सत्तो, आज मेरा जन्मदिन है। हाय, तो बोली क्यों नहीं, जन्मदिन है? सच? तू भी कैसी है, बताया तक नहीं। और सतवंत भागकर किचन में गई और थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ हलवा उठा लाई। पर हलवा निकालते ही उसे थोड़ी हैरानी हुई, जन्मदिन है और यहाँ अकेली भाग आई है मेरे घर चाय कॉफी पीने? ले मुंह मीठा कर। फिर जैसा कि प्रमिला की आदत थी, हल्के से आगे की ओर गर्दन बढ़ाकर बोली, मैं अकेली घर में कैसे पीती, मुझसे नहीं रहा गया, तुम्हारे यहाँ चली आई। सतवंत को बदन में हल्की सी कपकपी हुई, पर वह बोली कुछ नहीं, चुपचाप कॉफी के घूंट भरती रही। हमारे घर में किसी को परवाह ही नहीं, प्रमिला बोली। कल रात मैंने उन्हें बताया भी था, कल मेरा जन्मदिन है, मैंने और कुछ नहीं कहा। सुबह उठे तो सब भूले हुए, इतना भी नहीं कि मुबारक ही दे देते। जल्दी करो, मुझे काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो, बस यही कहते रहे। सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, बहुत दिल को नहीं लगाया कर। हलवे का एक छोटा सा कौर मुंह में डालने के बाद प्रमिला बोली, यह बाकी का हलवा मैं अपने साथ पप्पू के लिए ले जाऊंगी, खा खा, बहुत कुर्बानियां नहीं करते, मैं पप्पू के लिए और डाल लेती हूँ, तेरे लिए और ला दूँ, खाएगी? नहीं बस, प्रमिला बोली। फिर कॉफी का एक घूंट भरकर बोली, तेरा घर बहुत अच्छा है, सरदार जी तेरी बात सुनते हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। सतवंत ने बहुत कुछ सुन रखा था, वह जानती थी कि कोई बंगालिन है जिसके साथ प्रमिला के घर वाले का प्रेम चल रहा है, कि वह उसी के दफ्तर में काम करती है, पर वह जानबूझकर मुंह नहीं खोल रही थी। अब वह मुझे चांटे भी मारने लगा है, सहसा प्रमिला फट पड़ी और उसकी ठुड्डी कांप गई और आंखें छलछला आई। सतवंत का दिल धक से रह गया। क्यों भला, चाटे मारने का क्या मतलब है? पृष्ठ संख्या 52। मैं मुंह से कुछ भी कहूँ तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है, पहले कभी चांटा मारता था तो बाद में माफिया भी मांगने लगता था, पर अब तो माफी भी नहीं मांगता। सतवंत देर तक उसके चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, तो तू उसके आगे से नहीं बोला कर, तुझे क्या पड़ी है? वह जो कहता है उसे कहने दिया कर। मैं कुछ भी नहीं कहती सतवंत, मैं कुछ भी नहीं कहती सतवंत, मैं क्या कहती हूँ? मैंने एक बार कहा तुम इतना सिगरेट पीते हो, अगर कम सिगरेट पियो तो मैं पप्पू को ज्यादा फल खिला सकती हूँ। तो झट से मेरे मुंह पर चाटा दे मारा। तू कौन होती है मेरे साथ सवाल जवाब करने वाली? बड़ा बाहसी है, चाटा मारने का क्या मतलब? सतवंत क्रुद्ध हो उठी। आज के जमाने में चाटे कौन मारता है? तू चाटा तो उसे नहीं मारने दिया कर, अगर एक बार हाथ खुल गया तो रुकेगा नहीं। मन ही मन सतवंत स्थिति की तह तक जा पहुंची। यह सब उस औरत के कारण है, उसके पास जाना भी चाहता है और नहीं भी जाना चाहता। जितना ज्यादा अपने को रोकता होगा उतना ज्यादा प्रमिला पर अपनी खीज निकालता होगा। पर चाटे मारने का क्या मतलब है? सतवंत की आंखें एकटक प्रमिला के चेहरे पर लगी थीं। कितनी निरीह सी है यह मेरी सहेली, निरीह और गरीब और निःसहाय। महेंद्र का हाथ खुल गया है क्योंकि प्रमिला के मायके गरीब हैं। मायकों का इसकी पीठ पर हाथ होता तो हिम्मत नहीं पड़ती। अब वह जानता है कि प्रमिला उसी पर निर्भर है, वह जो चाहे कर सकता है। पर पप्पू के सामने तो मुझे नहीं मारे, पप्पू मेरी इज्जत क्या करेगा? बच्चों के सामने भी कोई आदमी अपनी बीवी को चांटे मारता है, इससे बच्चों को भी शाह मिलती है। पप्पू अभी से मुझे ठुड्ढे लगाने लगा है, उसकी कोई बात नहीं मानू तो लाते लगाने लगता है। अभी भी उस औरत के पास जाता है? प्रमिला की आंखें फैल गई। तुझे मालूम है सत्तो? तुझे किसने कहा? मुझे मालूम है प्रमिला। किसे मालूम नहीं, दफ्तर में सभी जानते हैं। सरदार जी ने मुझे बताया है और मुझसे कहता रहा है, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। कितनी भौंडी सी लड़की है वह, पता नहीं इसे उस लड़की में क्या नजर आया था, प्रमिला ने अपने भोले अंदाज में कहा। पृष्ठ संख्या 53। तूने वह लड़की देखी है? हाँ सत्तो, हमारे घर आई थी। तुम्हारे घर आई थी? क्या मतलब? मुझे क्या मालूम सत्तो, मैं आज के तरीके नहीं जानती। मुझसे कहने लगा, अब मेरा कोई संबंध उस लड़की के साथ नहीं रह गया है। मैं अगर सीधे सीधे ढंग से उसे मिलता रहूंगा तो मेरे दिल में ललक नहीं उठेगी। कहने लगा, तू उसे अपनी सहेली बना ले। फिर वह तेरे घर आई थी, कैसी है? प्रमिला ने शुरू से आखिर तक उस भेंट का ब्यौरा दे दिया। सुषमा जब आई थी उस दिन पप्पू का जन्मदिन था और महेंद्र ने कहा था कि केवल सुषमा को बुलाएंगे। बाद में उसका दोस्त नाटा भी अपने आप आ गया था और महेंद्र देर तक नाटे से पिंड छुड़ाने की कोशिश करता रहा था। सुषमा छमछम करती चली आई थी, एक हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता उठाए हुए थी और दूसरे हाथ में चॉकलेटों का एक बड़ा सा डिब्बा, और वही आसमानी रंग की साड़ी पहनकर आई थी जो उसने उस रोज पहन रखी थी जब महेंद्र उसके फ्लैट में गया था, और वही हल्का सा खस खस का इत्र लगाकर आई थी जिसकी महक प्रमिला के शरीर की महक से मिलकर महेंद्र को परेशान करने लगती थी। सुषमा हंसती हुई आई थी और आते ही पहले पप्पू को छाती से लगा लिया था और उसे चॉकलेटों का डिब्बा दिया था। फिर प्रमिला से बगल गिर हुई थी और अंगीठी पर से गुलदान को खुद ही साफ करके उसमें फूल सजा दिए थे। मिनटों में घर वालों से हिल मिल गई थी। प्रमिला को भी बुरी नहीं लगी। प्रमिला जी, आज आपके बाल मैं बनाऊंगी, उसने कहा था, और बड़ी आत्मीयता से पलंग पर बैठकर प्रमिला की चोटियां बनाती रही थी। कभी एक ओर से मांग निकाल कर उसे देखती, कभी बीच में से मांग निकाल कर देखती, फिर कपड़ों की अलमारी खोलकर उसके लिए साड़ी चुनती रही। यह कैसी रहेगी प्रमिला जी, आपकी अपनी पसंद की साड़ी कौन सी है और उसकी पसंद की साड़ी कौन सी है? हाय, कितनी अच्छी साड़ियां हैं आपके पास। फिर उसने सिल्क की हल्के क्रीम रंग की साड़ी निकाली थी जिस पर लाल रंग का बॉर्डर था और बॉर्डर के बीचों बीच तिल्ले का काम हो रहा था। यह तो आपकी शादी की साड़ी जान पड़ती है ना? पृष्ठ संख्या 54। मेरी मंगनी की साड़ी है, प्रमिला ने कहा था, यह बनारस से लाए थे, महेंद्र लाए थे बनारस से। बड़ी प्यारी साड़ी है, इसी को पहनिए ना। पर फिर स्वयं ही उसे अलमारी में रखकर कोई दूसरी साड़ी खोजती रही थी। फिर सुषमा ने महेंद्र की अलमारी को भी खोल दिया था और देर तक सहलाती सी नजर से उसके अंदर रखे कपड़ों को देखती रही थी। आपने मेरे लिए साड़ी चुनी है, आप उनके लिए भी सूट चुनिए ना, प्रमिला ने व्यंग्य में कहा था। जिस पर सुषमा झेप गई थी। हाय नहीं, मर्दों के कपड़ों में क्या रखा है, सभी मर्द एक जैसे कपड़े पहनते हैं। पर फिर भी देर तक खुली अलमारी के सामने खड़ी रही थी और बाद में महेंद्र के पलंग की पाटी पर बैठ गई थी और एक हाथ से उस पर बिछे कंबल को सहलाती हुई सी बोली थी, कितना मुलायम है कंबल, देसी है या बिलायती? आप कहाँ सोती हैं प्रमिला जी? आपका कौन सा पलंग है? आप दफ्तर में क्या काम करती हैं? प्रमिला ने उसके सामने बैठते हुए पूछा था। मैं कैशियर का काम करती हूँ। टाइप करती हैं? टाइप भी करती हूँ। अलग अलग विभागों से संपर्क रखना भी मेरा काम है। यह भी आपके साथ ही काम करते हैं? हाय, मैं कहाँ और यह कहाँ? यह तो अफसर हैं, सुषमा ने झेपते हुए कहा था। प्रमिला को उसके साथ बातें करना बुरा नहीं लग रहा था। घर में कोई बात करने वाला तो था, वरना वह दिन भर एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रहती थी या फिर पप्पू का काम करती रहती थी। महेंद्र ने प्रमिला के मन का दुराग्रह धो डालने के लिए पहले से लंबी तमहीद भी बांध रखी थी। प्रमिला, कुछ समझा करो, सुषमा भी भले घर की लड़की है, उसके बाप को लकवा मार गया है, वह नागपुर में कहीं पड़ा है, रुपये जमा करके उसके इलाज के लिए भेजती है। इसने स्वयं शादी नहीं की क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। बुरी औरत नहीं है, यह हम लोगों का दम है कि हम काम करने वाली स्त्रियों को बुरा समझते हैं। यह मजबूरी में पड़ी है, वरना अपना घर छोड़कर कौन आता है। पृष्ठ संख्या 55। प्रमिला अपने बालों की मांग बीच में से निकाला करती थी। सुषमा ने उसकी मांग थोड़ी बाईं ओर से निकाली। प्रमिला ऐन पीछे जूड़ा बनाती थी। सुषमा ने उसका ऊपर को उठा हुआ जूड़ा बनाया और उसमें अपने बालों में से एक फूल निकाल कर खोंस दिया। बार बार कभी बाहर से कभी किसी बहाने से महेंद्र उधर से गुजर जाता। एक बार प्रमिला को अकेले पाकर मौका देख कर बोला, तुम भी कुछ बोलो ना, वही सारा वक्त तुमसे बातें किए जा रही है। बोल तो रही हूँ, और कैसे बोलूँ, प्रमिला ने कहा, फिर मुंह फुलाकर बोली, वह तुमसे मिलने आई है, मुझसे मिलने थोड़े आई है, तुम कभी कुछ नहीं समझोगी। महेंद्र उपेक्षा से कहकर चला गया था और चाय के वक्त मेज पर पति पत्नी के बीच तकरार हो गई थी। चाय के परोसने का सारा काम सुषमा ने किया था। प्रमिला उत्तरोत्तर ज्यादा गुमसुम बनती जा रही थी। चाय पीने से पहले प्रमिला ने मठरी लेकर उसके ऊपर नींबू का अचार का पूरा टुकड़ा रख दिया। बहुत अचार नहीं खाओ प्रमिला, तुम्हारा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। प्रमिला चुप रही पर अचार का टुकड़ा मठरी पर रखे रही। न जाने किस आवेश में वह सारा का सारा टुकड़ा एक मठरी के साथ खा गई। महेंद्र चुप रहा। प्रमिला ने एक और मठरी ली और उस पर एक और टुकड़ा नींबू के अचार का रख लिया। मुझे कुछ नहीं होता, प्रमिला ने कहा और खाने लगी। तुम जानबूझकर मुझे कल पाने के लिए ऐसा करती हो, महेंद्र ने सहसा ऊंची आवाज में कहा। पर प्रमिला फिर भी मठरी अचार के साथ खाती रही थी। कितनी ढीठ हो प्रमिला, मैं बके जा रहा हूँ और तुम मजे से खाए जा रही हो। और वह उठकर छज्जे पर चला गया था और घर में चुप्पी सी छा गई थी और तनाव सा आ गया था। उसी समय नाटा चला आया था। नाटा सदा बिन बुलाए पहुंच जाता था। उस रोज भी वह बिना बुलाए पहुंच गया था और खूब पिए हुए था। पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया था। सुषमा तो जल्दी ही चली गई थी, मगर नाटा देर तक बना रहा और खाना खाकर गया था। महेंद्र सुषमा को टैक्सियों के अड्डे तक छोड़ने गया था। इस बीच नाटे ने नशे में प्रमिला के हाथ से प्लेट लेते समय नीचे से उसका हाथ छू लिया था और मेज पृष्ठ संख्या 56 पर बैठा देर तक अपनी नमदार आँखों से उसकी ओर देखता रहा था। और जब प्रमिला उसे तरकारी देने आई तो उसके हाथ से तरकारी की प्लेट लेते समय उसने प्रमिला की कोहनी दबा दी। तुम चिंता नहीं करो, भाभी मैं खुद ले लूँगा। और जब खाना खा चुकने पर महेंद्र हाथ धोने के लिए गुसलखाने में गया और प्रमिला मेज पर से बर्तन उठाने लगी तो उसने उठकर प्रमिला को करीब करीब गले पर चूम लिया। तुम कितनी अच्छी हो, यह साला, यह जो मेरा दोस्त है, यह महेंद्र, यह तुम्हारी कद्र नहीं जानता, यह कितना खुशकिस्मत है साला। प्रमिला को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। घर की जिंदगी का सारा क्रम ही मानो ढर्रे पर से उखड़ गया था और वह अपना संतुलन खोए जा रही थी। नाटे के चले जाने के बाद उस रात जब प्रमिला ने महेंद्र से कहा कि नाटा बार बार मेरा हाथ दबाता रहा था, तो वह हंस दिया था। एक आध बार तो तुमने भी दबाया होगा। हत, ऐसा कहते शर्म नहीं आती? मैं क्यों दबाऊंगी, मुझे तो घिन उठती थी। कितना बुरा तुम्हारा दोस्त है, लिजलिजा सा। बड़े बुरे दोस्त हैं तुम्हारे। नाटे की हरकत के बारे में सुनकर महेंद्र को क्रोध भी आया था और दिल में टीस सी भी उठी थी। मन ही मन उसने यह भी चाहा था कि नाटा कुछ और ज्यादा बेहूदगी करता, ताकि प्रमिला के खिलाफ महेंद्र को कुछ ठोस बात कहने को मिलती। थोड़ी और पिए रहता तो यह भी कर डालता, पर उसने हंसकर करवट बदल ली। जो तुम्हें अच्छा लगे उसी का हाथ दबा लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर उसका यह वाक्य प्रमिला को सिर से पांव तक झकझोर गया था। तभी हवा के हल्के से झोंके की तरह सुषमा महेंद्र की आंखों के सामने आ गई थी और उसके शरीर की मादक गंध उसकी नस नस में व्याप गई थी। वही आसमानी रंग की वायल की फरफराती साड़ी पहने हुए थी जो शाम को पहनकर आई थी, और महेंद्र को लगा था जैसे जिंदगी में एक ही चीज निश्चित है और वह वासना है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है, डगमगा रहा है। अपनी कल्पना में ही उसने सुषमा के गदराए शरीर को बाहों में भर लिया था। महेंद्र के कमरे की दीवार पर लगे अमूर्त कला के चित्र की भांति सुषमा का शरीर भी नग्न था, गदराया हुआ, असंख्य वासनाओं से भरपूर। पर महेंद्र उसके चेहरे की ओर देखता तो चेहरा ओझल हो जाता था। महेंद्र की आंखें सुषमा के शरीर को तो देख पाती, पर चेहरे की ओर आंखें उठाने पर सुषमा का चेहरा फौरन धुंधला जाता, स्पष्ट हो जाता। पृष्ठ संख्या 57। महेंद्र के अंदर ही अंदर जैसे खटाक सा शब्द होता और सुषमा का चेहरा धुंधला जाता। महेंद्र ने करवट बदल ली और जल में से फेंकी हुई मछली की तरह छटपटाने लगा। तभी रोज की तरह बालों को कंघी करने के बाद और अपने पलंग पर पालथी मारकर प्रार्थना करने के बाद प्रमिला अनमने मन से किंतु परंपरागत कर्तव्य को पूरा करने हेतु महेंद्र के बिस्तर में जाकर लेट गई, और महेंद्र का मन वितृष्णा से भर उठा। औपचारिक रूप से उसने करवट बदल ली, लेकिन उसके हाथ और बाहें और सारा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया था। उसकी छाती से सटा प्रमिला का सिर महेंद्र को बोझल लगने लगा था। आज भी प्रमिला के शरीर और कपड़ों से हल्की हल्की रसोई की गंध आ रही थी। महेंद्र ने प्रमिला का सिर अपने पर से हटा दिया और तनिक पीछे की ओर खिसक कर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। एक बार फिर सुषमा के भीगे होंठ उसकी आंखों के सामने आ गए और उनके ऊपर हल्के हल्के नमी के कतरे, जिन्हें महेंद्र ने एक दिन रुमाल से पोंछ दिया था। महेंद्र विचलित हो उठा। उसने ठंडी सांस ली और अपना दायां हाथ उठाकर प्रमिला के कंधे पर रखते हुए उसे तनिक झिझोड़ते हुए बोला था, उठो प्रमिला, अपने बिस्तर पर जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही थी, फिर प्रमिला ने उठते हुए कहा था, हाँ जा रही हूँ, और अपने पलंग पर आ गई थी। और दोनों देर तक अपनी अपनी उधेड़बुन में खोए छत की ओर ताकते रहे थे। सतवंत ने सारी बात सुनी, उसे भी बहुत अचंभा हुआ। महेंद्र के प्रति मन में क्रोध भी उठा, पर वह अपनी सहेली को क्या सीख देती, कौन सा रास्ता सुझाती? क्या उसके बाद सुषमा कभी आई है या यह उसके पास गया है? मैं नहीं जानती, शायद नहीं गया होगा। जाए भी तो पम्मी, तो कुछ कर नहीं सकती। तुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए। चुप मगन बनी रहा। अगर इसे रोकेगी तो मामला और बिगड़ेगा। इसकी शराफत है जो इसने खुद तुम्हें बता दिया और माफी भी मांग ली, वरना आजकल माफी कौन मांगता? यह 2 दिन का उबाल है, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। प्रमिला सतवंत के चेहरे की ओर देखती रही। पर यह चांटे मारने वाली बात बुरी है। चांटे मारने का क्या मतलब है, सतवंत ने कहा, और कहते कहते उसका क्रोध उबल पड़ा। पृष्ठ संख्या 58। उसे साफ दो टूक शब्दों में कह दे, तेरा जो मन आए कर, जिसके पास जाना चाहता है जा मेरी बला से, पर मैं तेरे से पिटूंगी तो नहीं, खबरदार जो मुझ पर कभी हाथ उठाया। फिर प्रमिला का हाथ पकड़कर बोली, तू डर नहीं मेरी बहन, डर कर रहेगी तो तुझे और लताड़ेगा। अगर हाथ उठाए तो बेशक कह दे कि तुम उसके दफ्तर में जाकर उसके अफसर से शिकायत करोगी, तुम अफसर के सामने उसकी सारी पोल खोल दोगी। ये नौकरियों वाले इस किस्म की शिकायतों से बहुत डरते हैं, अपने आप सीधा हो जाएगा। उसे कह दे मैं तेरे बच्चे की माँ हूँ, तू बच्चे के सामने मुझे पीटता है, यह तुझे शोभा नहीं देता। डॉट डॉट। सतवंत देर तक बोलती रही। उसकी बात सुन सुनकर प्रमिला का साहस बढ़ता रहा। उसे लगा जैसे उसकी स्थिति इतनी अधिक विकट नहीं है कि उसका भी कोई मददगार है। सतवंत प्रमिला के साथ दरवाजे तक आई तो भी यही चर्चा करती रही। आजकल दफ्तरों की लड़कियां भी तो इन्हें दम नहीं लेने देती। बड़ी तेज हैं मुइयां, हमारे घर बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, इतनी बेधड़क हो गई हैं, खुद मर्दों का हाथ पकड़ लेती हैं। इधर पीछे एक मुई रहती है, बंगालन है, न शक्ल न सूरत। उसकी खिड़कियों पर अधूरे पर्दे चढ़े रहते हैं। वह भी किसी दफ्तर में काम करती है, जहाँ जाती है टैक्सी पर। मुई के पास इतने पैसे कहाँ से आए? शर्माया बेच खाई है। चलने से पहले जब प्रमिला ने आंख उठाकर सतवंत की ओर देखा तो सतवंत का दिल द्रवित हो उठा। प्रमिला इतनी घबराई हुई और किम कर्तव्य विमूढ़ सी लग रही थी। सतवंत ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े दुलार से कहा, तू चिंता नहीं कर, ऐसे मामले हर घर में हो रहे हैं, तू घबरा नहीं। घबरा जाएगी तो मामला सुधरने की बजाय और बिगड़ता जाएगा। तू अपनी जगह पर डट जा, उसका पीटने का कोई मतलब नहीं है। हाथ उठाए तो उसे धमका दे। अंदर से सभी मर्द बड़े डरपोक होते हैं, सरकारी नौकरियों वाले तो खास तौर पर डरपोक होते हैं। इससे वह और भी ज्यादा संभल जाएगा। ये अफसर लोग किसी तरह भी अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहते। डॉट डॉट एक अनुभव है जो पुराने लोगों का है और उसके आधार पर वे सीख देते हैं। दूसरा अनुभव है जो नए युवा लोगों का है, आज के लोगों का है, जो उसके आधार पर वह भी सीख देते हैं। पर स्त्री से प्रेम ना तो नया अनुभव है ना नई समस्या। पृष्ठ संख्या 59 ना नई स्थिति है। सहस्त्रों वर्षों से ऐसा होता आया है। उस काल में भी जब समाज अपने परंपरागत मूल्यों के आधार पर चल रहा था और उस काल में भी जब पुराने मूल्य टूट रहे थे और नए मूल्य मनुष्य के मन पर अपना अधिकार जमाने लगे थे और समाज का जीवन अस्थिर और डावाडोल हो रहा था, पर देश और काल के अनुरूप अथवा प्राचीन परंपरागत अनुभवों के अनुरूप सीख मिले और मनुष्य सतर्क हो जाए और अपने व्यवहार को उसी के अनुसार ढाल ले और सुखी हो जाए, ऐसा कब हुआ है? मनुष्य का जीवन सीधी रेखा पर भी कभी चल पाया है? और वह भी त्रस्त उखड़े हुए आतंकित मनुष्य का? लंबे अरसे तक प्रमिला महेंद्र के व्यवहार के बावजूद अपने घर में सुरक्षित महसूस करती रही थी। वह बौखलाई थी, क्रुद्ध हुई थी और सुरक्षित व्यक्ति की ही भांति महेंद्र को बुरा भला भी कहती रही थी। पर जब से सुषमा ने घर में कदम रखा तो प्रमिला को किसी घुमड़ती आँखों का भास होने लगा था और वह घबरा उठी थी। 20वीं सदी में रहते हुए भी उसका पालन पोषण शताब्दियों पूर्व के जीवन के अनुरूप हुआ था। आसपास की दुनिया को देखते हुए भी वह अपने गृहस्थ को विलक्षण और अलग मानती आई थी, पर अब पैरों के नीचे की जमीन किसी किसी वक्त हिल सी जाती थी और वह समझ नहीं पाती थी कि किस चीज का सहारा लेकर खड़ी हो। इसी तरह प्रमिला फिर एक भूल कर बैठी। सतवंत के घर से लौटते हुए रास्ते में अकारण ही वह घबरा गई। उसे लगा जैसे घर लौटने में उसने देर कर दी है। और इसी बीच महेंद्र सुषमा के घर चला गया है। उसने मन को समझाया कि अगर वह चला भी गया है तो वह उससे कुछ नहीं कहेगी, चुप्पी साधे रहेगी, जैसे सतवंत ने कहा है वैसा ही व्यवहार करेगी। परंतु यह सोच कर कि वह इस वक्त घर पर नहीं होगी, उसके पांव तेज हो गए और वह घबराई हुई सी घर पर पहुंची। आमतौर पर पप्पू के बारे में सोचकर उसके कदम तेज हो जाया करते थे, पर उस रोज उसे पप्पू का ध्यान तक नहीं आया। सीढ़ियां चढ़कर वह सीधी बैठक में पहुंची। महेंद्र घर पर ही था, कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था और अखबार देख रहा था। मुझे देर हो गई, मैं सतवंत के घर चली गई। तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, पप्पू कहाँ है? महेंद्र ने अखबार पर से सिर उठाया। पड़ोस में कहीं खेल रहा है, महेंद्र ने धीमी भावशून्य आवाज में कहा और पृष्ठ संख्या 60 फिर से अखबार देखने लगा। मेरी अक्ल मारी गई, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। तुम लोगों को भूख लगी होगी, उसने उसी तरह घबराई सी आवाज में कहा। माई कब गई थी? मुझे नहीं मालूम, थोड़ी देर पहले गुसल खाने में कपड़े धो रही थी। मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ, कहती हुई उसने चुन्नी उतार कर कुर्सी पर फेंकी और रसोई घर की ओर बढ़ गई। पर उसके मन की उत्तेजना ज्यों की त्यों बनी रही। खाना मेज पर रखते समय उसने पूछा, तुम सारा वक्त घर पर ही बने रहे या बाहर कहीं गए थे? महेंद्र ने अखबार पर से सिर उठाया और प्रमिला के प्रश्न का आशय समझ कर छीण सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं मैं कहीं नहीं गया। प्रमिला उत्तेजित सी ठिठकी रही, फिर बोली, तुम पहले खाना खा लो, मैं और पप्पू बाद में खा लेंगे। खाना परोस देने के बाद प्रमिला दरवाजे की चौखट के साथ लगकर प्यासी चिड़िया की तरह मुंह खोले हांफती सी रही, फिर चहक कर बोली, आज शाम कहीं बाहर चलेंगे, पप्पू को भी ले चलेंगे। महेंद्र चुप रहा, फिर उठकर अखबार तिपाई पर रखते हुए वह खाने वाली मेज की ओर बढ़ गया। नहीं, शाम को मैं घर पर नहीं होऊंगा, मुझे बाहर जाना है। प्रमिला का दिल धक से रह गया। कहाँ जाना है, तुमने पहले तो कहा नहीं। डॉट डॉट, आज तीनों एक साथ कहीं चलेंगे, पप्पू बड़ा खुश होगा। चलो सिनेमा देखने चलेंगे। महेंद्र को लगा जैसे प्रमिला जानबूझकर कुरेदने के लिए सवाल पूछ रही है। नहीं, मुझे बाहर जाना है, महेंद्र ने गहरी दृढ़ आवाज में कहा। कहाँ जाना है तुम्हें? महेंद्र कमरे के बीचों बीच खड़ा था, वैसे ही जैसे उस भयानक शाम को खड़ा था जब पहली बार उसका हाथ प्रमिला पर उठा था। क्या तुम्हें बताना होगा कि मुझे कहाँ जाना है? प्रमिला की नज़र अनायास ही महेंद्र के हाथ की ओर गई। चाटा मारने के लिए कौन सा हाथ उठेगा, दायां या बायां? पृष्ठ संख्या 61। यह तुम कैसी बातें करने लगे हो, सीधे साधे लोगों की तरह। तुम क्यों नहीं रहते, पहले सब कुछ बता दिया करते थे। प्रमिला ने दुस्साहस करके पूछा। जाओ अपना काम देखो, महेंद्र ने कहा और मेज पर खाना खाने के लिए बैठ गया।